आप हैं SBS हिंदी के साथ।
आज हम आपको मिला रहे हैं एक डॉक्टर से, एक माँ से, एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन से, एक रिसर्च स्कॉलर से और एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से। आप हैरान होंगे कि हम आपको इतने लोगों से एक साथ क्यों मिलवा रहे हैं, पर यह कोई अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी महिला है जिन्होंने इस रविवार को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया है। आइए बात करते हैं 29 वर्षीय डॉक्टर माया राठौड़ से। माया, आपने संडे को एक प्रतियोगिता जीती, इसके बारे में हमें बताएं।
ये इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, एलाइट, दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सारे स्टेट्स के लोग आते हैं और ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप होता है ओपन। तो उसमें मैंने फिगर में कम्पीट किया था जिसमें मैं विनर रही हूँ फर्स्ट। एंड फिर जब ओपन कैटेगरी थी जहाँ पे सारे स्टेट्स की लड़की कंपेरिजन में आई थी, वहाँ पे मैं थर्ड पोजिशन पे आई हूँ।
माया, आप एक डॉक्टर हैं और आप हिंदुस्तान से रिसर्च करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थी पिछले साल, तो आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कैसे आई?
मैं एक्चुअली प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, मैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं IVF स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं एक्चुअली अपने मेरे दोस्त कुछ थे जो बॉडी बिल्डिंग में काफी सालों से थे, जैसे एक है श्रीकांत दुलम जिन्होंने मुझे सच में इंस्पायर किया था टू स्टार्ट विद। तो वो काफी सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं बॉम्बे में, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकते हैं करके। उस टाइम पे तो मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो काफी दिक्कत होती थी मुझे, बट देन स्लोली स्लोली आई डेवलप्ड कि मैं जाऊं। और फिर ऐसे मेरी इसमें रुचि रही क्योंकि मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में थी। मैंने टाइकांडो किक बॉक्सिंग किया हुआ है, मार्शल आर्ट्स किए हुए हैं, मैंने नेशनल लेवल्स पे 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और मैं महाराष्ट्र कैडेट कॉर्प्स के टाइम पे बेस्ट महाराष्ट्र कैडेट कॉर्प रह चुकी हूं अपने स्कूल टाइम्स में। स्पोर्ट्स में रुचि पहले से ही थी, बट हाँ स्टडीज और इसमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बाद में सारी चीजें दूर होती गई। लेकिन बाद में जैसे फ्रेंड्स मिले, उन्होंने कहा कि आप करो। मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट काफी गेन हो गया था, आई वॉज अराउंड 86 kg। और उस टाइम पे आई थॉट लाइक नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक इनटू शेप। और वहां से फिर मैंने अपने जिम की जर्नी शुरू की और वहां से फिर मैं पहली बार लास्ट ईयर बॉम्बे में मैंने कंपटीशन खेला और मैं सेकंड प्लेस पे आई। फिर मैं स्टेट लेवल पे गई और फिर स्टेट लेवल पे भी मैं सेकंड लेवल पे आई और फिर मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई। और इस तरह से फिर मेरी इस जर्नी को शुरुआत मिली और मैं नेशनल में सिलेक्ट हो गई तो मेरा इंटरनेशनल में क्वालिफिकेशन हो क्वालिफाई हो गई और फिर मैंने इस संडे को यहाँ पे खेला।
तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये?
हाँ, मुश्किल तो था, ये तो नहीं कहूंगी कि आसान था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट कहते हैं ना कि अगर आप चाहो जिद करो तो कर सकते हो। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि मैं ऐसे बायस नहीं हूँ, बट मैं हमेशा से मानती हूँ कि अगर जैसे हम इंडिया में जाते हैं तो इंडिया में एक मेल डोमिनेंस काफी ज्यादा दिखता है हमको, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते टू सम एक्सटेंट। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर एक फीमेल जिद पे आ गई तो वो कोई भी लिमिट्स क्रॉस कर सकती है, भले वो पॉजिटिवली हो नेगेटिव हो। तो यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ, आपको उतना जिद पकड़ना होता है कि अगर मुझे करना है तो करना है, फिर वो पॉसिबल हो जाता है, फिर आप उसमें से वेज आउट निकालना शुरू कर देते हो। जैसे नॉर्मली लोग जिम जाते समय ये एक्सक्यूज देते हैं मोस्ट ऑफ लोग के टाइम नहीं मिलता है, मैं भी टाइम नहीं निकाल पाती थी बिकॉज मेरी बच्ची की सुबह 7 बजे स्कूल होती है और उससे पहले मुझे घर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी भी होती है। इसलिए मैंने वे आउट ऐसा निकाला कि हमने 24 आवर्स जिम ज्वाइन किया जहाँ पे मैं सुबह 3:30 या 4 बजे अपना पहला सेशन कंप्लीट कर पाऊँ। तो यहाँ मुझे ऐसे वे से सैक्रिफाइस करना पड़ता है मेरी नॉर्मल रूटीन लाइफ से कि अगर मुझे करना है तो मैं अपनी फैमिली लाइफ को संभाल के आई हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स कि मैं थोड़ा सा रात का समय अपने लिए यूटिलाइज कर लूँ, क्योंकि बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये राउंड द क्लॉक होती है, तभी आप अपना टाइम निकाल पाते हो जब वो सो जाते हैं या फिर यार इन देयर ओन स्पेस। तो उसको मैंने इस तरह से यूटिलाइज किया, लाइक नॉट बीइंग मोर ऑन सोशल मीडिया, मैंने सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए या फिर एक खुद का क्वालिटी टाइम ना स्पेंड करते हुए आई डेडिकेटेड इट टू माय जिम एंड माय ट्रेनिंग एंड माय मील मेकिंग टाइम।
आप सुबह कितने बजे ट्रेनिंग शुरू कर देती थी और आपका पूरा दिनचर्या कैसा रहता था?
जैसे मान लो एक रूटीन ऐसा होता था कि मॉर्निंग कभी 3:30 या कभी 4 o'clock, कभी कभी तो मैं इंस्टा पोस्ट भी कर देती थी कि अराउंड 3:30 योर डेडिकेशन हैज नो एक्सक्यूज। 3:30-4 o'clock को मैं अपना पहला सेशन शुरू करती थी। उसके बाद 7 o'clock को मेरी सबसे बड़ी बेटी का स्कूल होता है, तो उसके लिए उसको रेडी करके फिर मैं उसको अराउंड 8 o'clock को ड्रॉप करती थी। आने के बाद मेरी सेकेंड डॉटर, वो एक स्पेशल नीड चाइल्ड है, तो उसको हम वी हैव टू टेक केयर ऑफ हर, तो उसको उसका फिजियो सेशन होता है, उसका स्पीच थेरेपी होती है, तो ये सब करके देन घर का सारा काम खत्म करके अगर लाइक जैसे स्टडीज को टाइम आफ्टरनून में मिल गया तो आफ्टरनून में कर लेते थे या फिर शाम पे टाइम पे, और जैसे ही मेरे हस्बैंड शाम को आ जाते थे लाइक अराउंड 5:30 और 6 o'clock एट द मैक्स, उसके बाद फिर मैं अपने ट्रेनिंग को जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता है दैट एज ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनको कभी कभी 8-9 भी बज जाते थे रात के, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मुझे रात को अपना सारा काम खत्म करके 10-10:30 बजे जिम जाना होता था और मैं फिर 1:30-2 बजे तक घर पे आती थी।
जी, इस हिसाब से तो आपको शायद सोने को बहुत कम मिलता होगा, शायद 2 या 3 घंटे।
हाँ, बहुत कम। बहुत टाइम ऐसा होता था कि दोपहर में मैं अपनी बच्चियों को हाथ में लेके सो जाती थी एंड मैं सबको यही बोलती थी कि भाई मेरे में एक अलग टैलेंट आ गया कि मैं खड़े खड़े सो सकती हूँ, मुझे इतनी नींद की जरूरत है। सो होता था, लास्ट के 4-5 महीने काफी स्ट्रगलिंग है, बट यस कर लिया।
तो ये आपने जो बताया कि आपने इसको कर लिया, तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या था अचानक से?
हाँ, मुझे मोटिवेशन सिर्फ यही था कि मैं यहाँ तक आई हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया था, मैं जब पहली बार वर्कशॉप पे गई बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन पे, तब मुझे पहली बार जो वहाँ की जज थी, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे आज 25 साल हो गए यहाँ पे, मैंने आज तक कोई इंडियन को इस प्लेटफॉर्म पे आते हुए नहीं देखा, आज पहली बार मैं किसी डॉक्टर इंडियन लड़की को इस प्लेटफॉर्म पे देख रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि चलो इंडियन में से लड़कियां यहाँ तक आ गई हमारे पास। बिकॉज वो कहती थी कि ऑस्ट्रेलिया में मैं काफी इंडियन लड़कियों को देखती हूँ, यहाँ पे काफी इंडियन पॉपुलेशन है, बट कोई अपना आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ये कॉम्पिटिशन में नहीं आता है। सो शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी कि फाइनली उनको कोई एक ब्राउन स्किन यहाँ पे मिली जो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी, एंड उन्होंने काफी मुझे हेल्प की, बिकॉज ये अपना जो इंडिया का कॉम्पिटिशन होता है, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है हर चीज को लेके, मतलब क्राइटेरिया से लेके उनके जो भी जजिंग पॉइंट्स होते हैं उनसे। सो उन्होंने काफी मुझे हेल्प की उन सब चीजों के लिए, और जब उन्होंने ये कहा, मैं एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं कम्पीट करूंगी, मैं अपने डेली लॉकडाउन में भी मैं अपना वर्कआउट बाहर ही करती थी, होम वर्कआउट करती थी, बट जब मैंने उनका पहली बार वर्कशॉप ये किया और उन्होंने कहा था कि आज तक कोई इंडियन यहाँ पे नहीं आई है, दैट वॉज द मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया था कि अब यहाँ आ गए ना तो यहाँ तो झंडा लहरा के जाएंगे भाई, अब इससे यहाँ से पीछे नहीं मुड़ेंगे। एंड दैट वॉज द ओनली पॉइंट व्हेन आई टुक अ डिसीजन ऑफ कमिंग होम एंड सेइंग कि मॉम डैड आई एम गोइंग टू कम्पीट दिस ईयर, और मैं चाहती हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कम्पीट करूँ। और तभी मेरे मॉम डैड का यही कहना था कि बेटा वहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता है, यू डोंट हैव सर्वेंट्स लाइक इंडिया, वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल होगी। बट देन
की फैमिली ने आपके साथ कैसे आपको मदद की, उनका क्या सहयोग रहा?
मेरी फैमिली, यस, माय मॉम माय डैड वेर टू मच मोटिवेटिंग टू मी। माय मॉम मुझे मील्स बना के देती थी जब मैं कम्पीट कर रही थी, उससे पहले मैं गुजरात में थी, आई वॉज डूइंग अ जॉब एंड आई वॉज डूइंग माई IVF का रिसर्च वहीं पे, तो उस टाइम पे वहाँ पे एक मुझे याद है एक साउथ इंडियन फैमिली, वो आंटी अंकल, दैट आंटी अपना घर का सारा काम खत्म करके वो मेरे लिए मील्स बना के रखती थी, क्योंकि मैं वहाँ पे 3 हॉस्पिटल्स को अटैच थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था सारे हॉस्पिटल्स में OPD करना, सर्जरीज करना, पेशेंट्स देखना, तो मुझे खुद के लिए वो मील्स प्रिपेयर का टाइम नहीं होता था कि जहाँ पे मेरा डाइट छूट जाता था, तो वो आंटी मुझे लाइक मदर, शी यूज टू टेक केयर कि मैं अपने मील्स टाइम पे ले लूँ, वो बना के रखती थी। जैसे हमारा हॉस्पिटल्स में कैंप होता था, हम इंडस्ट्रियल एरियाज में जाते थे, वहाँ पे कैंप्स लेते थे, तो उस टाइम पे मुझे घर पे आके मील्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता था, तो वो टाइम पे ये वो मुझे बहुत हेल्प करती थी। तो इस तरह से मुझे हमेशा इंडिया में सपोर्ट सिस्टम रहा गया है कि जहाँ पे मैं ये सब चीजें आसानी से करूँ, मेरी बच्चियों की टेक केयर करना, वहाँ पे आंटियाँ होती थी जो टेक केयर कर लेती थी। बट यहाँ पे ऐसा होता है ना कि यहाँ पे यू आर वेरी आइसोलेटेड, आपको हर चीज, मतलब अगर आपको प्यास भी लग रही है तो आपको खुद को वो उठ के प्याज काटना है, आपको कोई उठा उठ के देगा नहीं. सो दैट इज द थिंग. यहाँ पे ये इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग हैंड नहीं होती है. सो दैट इज वाई एवरी रूटीन हैज टू बी मेड बाई यू. जैसे मैं आपको बताती हूँ, कुछ समय ऐसा था मेरे यहाँ पे कि मुझे बहुत ज्यादा वायरल हो गया था मेरे कॉम्पिटिशन के दौरान. मुझे माइग्रेन्स के पेन होते थे. माई हस्बैंड यूज टू बी आउट होल डे होल नाइट, मेरी दोनों बच्चियां. एंड देन आई यूज टू हैव दोज वायरल. उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, फिर आपको अपना डाइट भी दिखा के मेरे दिमाग में कि कुछ भी करके मुझे ये कंपटीशन जीतना है. क्योंकि ये जो टैग है कि यहाँ पे आज तक कोई लड़की खेली नहीं है, ये मुझे हटाना है. क्योंकि मैं यहाँ पे परमानेंटली रहूँ नहीं रहूँ आई डोंट नो, बट यहाँ तक आ गई हूँ ना, तो अब ये फेडरेशन ये नहीं बोल सकता कि आज तक कोई इंडियन लड़की यहाँ पे आई नहीं है. नाउ दे हैव नो वर्ड्स टू से दैट, क्योंकि हम इंडियंस आए और हम फर्स्ट प्राइज लेके गए.
जी, ये पूरे भारतीय समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने एक जिद पकड़ी और उस जिद को आपने पूरा भी किया और भारत का झंडा आपने ऑस्ट्रेलिया में आके लहराया.
आई वॉन्टेड टू डू दैट. मुझे पता था कि ये 8 महीने 9 महीने बहुत मुश्किल से जाने वाले हैं, लेकिन अब मेरी मुश्किल हल हो गई क्योंकि अब मेरे पास ट्रॉफी है और मेरे पास वो झंडा, वो मोमेंट था जहाँ पे मैंने इंडिया का फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के स्टेज पे चढ़ के पकड़ा हुआ था. दैट मोमेंट इज मोर इनफ फॉर मी कि अब मेरे को वो 8 महीने का दर्द बिल्कुल याद नहीं है.
आप हमारे श्रोताओं और स्पेशली महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी?
मैं ये संदेश देने से पहले ये कहूंगी कि जब मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आई थी तो मैंने कुछ दोस्त मुझे ऐसे मिले जिन्होंने हर मोमेंट पे मुझे हेल्प किया. सो आई वुड लाइक टू थैंक वेरी स्पेशल फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैज रियली हेल्प मी ओवर हियर. फॉर बिकॉज ये लैंड मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू था, तो आई विल नॉट डिनाई बैक कि मैं उनका नाम लिए बगैर शायद से यहाँ से अगर मैं इस कन्वर्सेशन को डिसकंटिन्यू कर दूँ तो मैं बहुत गलत काम करूंगी. सो आई विल लाइक टू टेल दैट अमित शर्मा एंड जस्सी, दीज पीपल हैव रियली सपोर्टेड मी ओवर यूर फॉर एवरी लिटिल थिंग. बंटी, जैस्मिन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज एज अ पार्ट ऑफ माय टीम. मैं नहीं समझती कि महिलाएं और जेंट्स में अंतर होता है, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप करो, बिकॉज हमारी लाइफ का क्लॉक चलता ही रहने वाला है, हमारी एज बढ़ती रहने वाली है, हम पीछे नहीं मुड़ने. आपको कुछ भी करना है, दिस इज द मोमेंट. तो इफ यू वॉन्ट टू डू इट, यू कैन मेक इट. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कोई भी घर नहीं है, अंबानी से लेके अमिताभ बच्चन तक का कोई घर नहीं है जिसमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. दुनिया के हर घर में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन इस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बियॉन्ड हम खुद एक इंसान है जिसके अंदर कुछ पैशन है, कुछ हमें कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है. उसके लिए स्टैंड लेना शुरू करो और उसके लिए जीना शुरू करो. That's the only thing I'll say.
जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें. SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें.